पृष्ठ संख्या 80, समाजवाद का अग्रदूत, प्रिकर्सर ऑफ कम्युनिज्म। वैसे तो थाइपिंगो की हार हुई, लेकिन उनके आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए थे। माओ ने चीन की क्रांति को शुरू करने के लिए इस आंदोलन की तरह ही कृषक शक्ति का उपयोग किया था। थाइपिंग आंदोलनकारी छिंग वंश को तो समाप्त न कर सके, पर उसे इतना कमजोर अवश्य बना दिया था कि 1911 की क्रांति के बाद उसका पतन हो गया। इस आंदोलन ने अपने क्रांतिकारी सामाजिक विचारों का प्रभाव चतुर्थ मई के आंदोलन पर डाला था। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि थाइपिंगो ने ही चीन में समाजवाद के बीजों को बोया था। दोनों ही आंदोलन अपनी प्रकृति से आधुनिकता के समर्थक थे। पश्चिम का आकस्मिक प्रभाव तथा वैज्ञानिक तकनीकी और सामाजिक प्रगति ने थाइपिंगो के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। इसी प्रकार साम्यवादियों ने एक आधुनिक एवं व्यवहारिक दर्शन प्रस्तुत किया, जिसकी सहायता से अतीत की चीनी परंपराओं तथा वर्तमान की पाश्चात्य धाक को चुनौती दी जा सकती थी। इसके अलावा थाइपिंग आंदोलन ने उस लक्ष्य का प्रतिनिधित्व किया जो तब तक पश्चिमी यूरोप या अमेरिका में साकार नहीं हो पाया था, और चीन में इसकी स्वीकृति से विचारधारा के आधार पर चीन पूंजीवादी देशों से आगे निकल जाता। दूसरे दोनों ही आंदोलनों को विद्वान लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। थाइपिंग आंदोलनकारियों का उदय गुप्त समाजों से हुआ, जिनके अधिकतर सदस्य अनपढ़ और बेरोजगार साक्षर व्यक्ति थे, जो पश्चिम की नई प्रवृत्तियों से अवगत थे। उन्होंने ही थाइपिंगो को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया। साम्यवादी दल के सदस्य तो थे ही साक्षर व्यक्ति साम्यवादी दल के सदस्य तो थे ही साक्षर व्यक्ति जो पश्चिम के रचनात्मक आधुनिक विकास से परिचित थे। थाइपिंगो और साम्यवादियों दोनों ने अलग अलग समय पर यह महसूस किया कि दोनों ने अलग अलग समय पर यह महसूस किया कि चीन में कोई भी आंदोलन या क्रांति कृषक वर्ग के सक्रिय सहयोग और भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता था। उन्होंने महसूस किया कि चूंकि चीन एक कृषि प्रधान देश था, जिसका कृषक वर्ग वहां की अर्थव्यवस्था का आधार था, इसलिए कोई भी आंदोलन कृषक वर्ग को अपना सामुदायिक आधार बनाए बिना किसी सफलता की उम्मीद नहीं कर सकता था। वास्तव में कृषक वर्ग के नेतृत्व में एक क्रांति का विचार सबसे पहले थाइपिंग नेता हुंग द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका संपूर्ण प्रयोग बाद में माओ ने किया। दोनों के विचार भूमि कार्यक्रम के बारे में एक से थे, और दोनों ने ही भूमि के पुनः वितरण की बात की। उन्होंने ग्रामीण शक्ति के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों ने लगभग एक सी भूमि प्रणाली व्यवस्था, निजी संपत्ति पर प्रहार, स्त्रियों के उद्धार तथा सरल लिपि के प्रयोग पर जोर दिया। दोनों साम्राज्यवाद विरोधी थे, जो चीन की दुर्दशा के लिए साम्राज्यवाद को उत्तरदायी मानते थे। असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेल्योर। थाइपिंगो का प्रमुख नेता और दिव्य राज्य का सम्राट हुंग सियोचिवन क्रांतिकारी नेतृत्व संभालने के बदले काल्पनिक दुनिया में रहने लगा। नानचिंग में हुंग तथा अन्य प्रमुख नेताओं के ऐसो आरामपूर्ण व्यवहार के कारण आंदोलन ढीला पड़ने लगा। हुंग ने नानचिंग के महल में स्वयं को नज़रबंद करके वहीं से धार्मिक और अस्पष्ट फरमानों को जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ऊपरी और प्रांतीय अधिकारियों के बीच मतभेद और गुटबंदी पैदा होने के कारण आंदोलन के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई। यहाँ तक कि हुंग से नेतृत्व छीनने के असफल प्रयास भी किए गए। आंदोलन के अंतिम दौर में हुंग रनचिन जैसे नेताओं ने फिर से उसे सही दृष्टिकोण देने का प्रयत्न किया, लेकिन सैन्य विफलताओं के कारण आंदोलन असफलता की ओर अग्रसर होता जा रहा था। थाइपिंगो की असफलता का मुख्य कारण नेताओं द्वारा व्यवहारिक नीति की उपेक्षा धर्मोन्मादपूर्ण और आदर्शवादी सिद्धांतों को अपनाना था। शुरू के कुछ वर्षों में आंदोलन की गतिविधियां काफ़ी तीव्र रही, लेकिन सही नेतृत्व का अभाव और सैन्य विफलता के कारण थाइपिंग समर्थक अपनी नीतियों और प्रणालियों को विजित क्षेत्रों में लागू नहीं कर पाए। युद्ध और समय का अभाव एक मुख्य कारण था, पर इसकी वजह से कृषकों का विश्वास और धैर्य धीरे धीरे टूटता चला गया और जनता का समर्थन मिलना बंद हो गया। पृष्ठ संख्या 82। पश्चिमी ईसाई धर्म प्रचारक शुरू में स्वयं और अपनी अपनी सरकारों को इस आंदोलन को समर्थन देने पर जोर दे रहे थे, लेकिन पश्चिमी सरकारें हिचकिया कर रही थी लेकिन पश्चिमी सरकारें हिचकिया रही थी। आंदोलन में ईसाई पहलू विदेशियों को मान्य था। आंदोलन में ईसाई पहलू विदेशियों को मान्य था, लेकिन विदेशी सरकारें समानतावाद के विरुद्ध थी। टॉमस तुंग वु का यह कहना है कि थाइफिंग घटिया कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ अच्छे संबंध कायम करने की कोशिश नहीं की। द थाइफिंग वेयर बैड डिप्लोमैट्स एंड डिड नॉट अटेम्प्ट टू कल्टिवेट गुड रिलेशंस विद द फॉरेन पावर्स। विदेशी ताकतों ने आंदोलन के स्थान पर मांचू सरकार को सुरक्षित रखने की योजना बनाई। फ्रांस और इंग्लैंड ने थियनचिन संधि के द्वारा पेचिंग में एक रूढ़िवादी और कठपुतली मांचू सत्ता को बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त किया। मांचू सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी सैन्य अधिकारियों, नौका जहाजों और सैन्य टुकड़ियों को चीन भेजा गया। सीजी गार्डन जैसे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने थाइपिंगों को कुचलने में और नानचिंग पर नियंत्रण स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। एमएन रॉय का तो यहाँ तक कहना है कि यदि साम्राज्यवादी शक्तियाँ हस्तक्षेप नहीं करती तो यह आंदोलन सफल हो सकता था। इस आंदोलन को चीन के विद्वान संभ्रांत वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था। यह वर्ग अपनी राजनैतिक व आर्थिक शक्ति को भूमि और परीक्षा की डिग्री से प्राप्त करता था। थाइपिंग आंदोलन की समानतावादी विचारधारा से इसके अधिकारों और शक्तियों का हनन हो सकता था, इसलिए उसने आंदोलन का विरोध और साम्राज्यवादी शक्तियों का समर्थन किया। फ्रेंच माइकल के अनुसार छिंग वंश का तो पतन हो ही रहा था, लेकिन सामाजिक रूप से चीन का संभ्रांत वर्ग अभी भी इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली था कि चीन के पुराने सामाजिक ढांचे को किसी भी आक्रमण से बचा सके। समाज को बचाने के प्रयास में उसने छिंग वंश को भी बचा लिया। केंद्रीय सेना के कमजोर हो जाने के कारण संभ्रांत वर्गों ने अपने सेनाओं का विकास करके थाइफिंग आंदोलन को कुचल दिया, जैसा कि फिलिप कुहन संकेत करते हैं। शुरू में थाइफिंग सेनाओं ने अवश्य छिंग शासकों की कमजोरियों का लाभ उठाया, लेकिन संभ्रांत वर्ग के दो प्रमुख नेता तजंग कुओफान और हु लिनयी की सेनाओं का मुकाबला करने की क्षमता थाइफिंग सेना के पास नहीं थी। कुहन का आगे कहना है कि चीन का राज्य और मांचू शासक इस आंदोलन को इसलिए झेल और विफल कर पाए क्योंकि अमीर संभ्रांत वर्ग को अभी भी पुरातन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास था। आंदोलन की विफलता के अगले 50 वर्षों तक छिंग शासकों का राजकाज चलता रहा। यही चीन की राजसत्ता की विशेषता थी।